आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड समेत देश भर में कल से शुरू होगा जनगणना का पहला चरण। डिजिटल माध्यमों से घरों की सूची, निर्माण सामग्री, स्वामित्व और बुनियादी सुविधाओं के जुटाए जाएंगे डाटा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल से की मुलाकात। कथित शराब घोटाला मामले में चार्जशीट दाखिल करने और सीबीआई से जांच कराने का आग्रह। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू ने पेशा कानून के बेहतर क्रियान्वयन और ग्राम सभा को सशक्त बनाने पर दिया जोर। राज्य के कई हिस्सों में 6 अप्रैल तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान। आज और कल आंधी और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी। और रांची में कल से दिखेगा महिला हॉकी का रोमांच। सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में टीमों के बीच होगी श्रेष्ठता की जंग। 12 अप्रैल को खिताबी मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड समेत देश भर में कल से जनगणना का पहला चरण शुरू हो रहा है, जो 30 सितंबर तक चलेगा। सुविधा के अनुसार राज्य अपनी 30 दिन की अवधि निर्धारित करेंगे। इस बार डिजिटल माध्यमों से दो चरणों में डेटा संग्रह होगा। पहले चरण में घरों की सूचीबद्धता, निर्माण सामग्री, स्वामित्व, बुनियादी सुविधाओं जैसे डेटा जुटाए जाएंगे। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में होगा, जिसमें आबादी, जाति, धर्म, शिक्षा और रोजगार जैसी चीजों की गणना होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के साणंद में केन सेमिकॉन संयंत्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र में होने वाला उत्पादन सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र से निर्मित चिप्स अमेरिका तक पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक अग्रणी भागीदार के रूप में उभर रहा है।
भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम किस गति से डेवलप हो रहा है, मैं केन्स टेक्नोलॉजी की पूरी लीडरशिप को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे इस बात की भी बेहद खुशी है, हमारे भारत की अपनी कंपनी केन्स अब ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का एक मजबूत हिस्सा बन गई है। अब हमारा प्रयास एक फुल स्टैक भारतीय सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार करने का है, ताकि हम डोमेस्टिक और ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी पार्टनरशिप कर सके।
रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज कृषि विज्ञान केंद्र विकास भारती विशुनपुर में आयोजित किसान मेला में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया। इस मौके पर श्री सेठ ने कहा कि केंद्र सरकार कृषकों की उन्नति के लिए कई योजनाएं चला रही है, इसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से झारखंड समेत देश भर के किसानों के जीवन में बदलाव आया है।
इसमें लगभग 9 करोड़ 32 लाख किसानों किसान सम्मान योजना के तहत 2,000 रुपए करके 6,000 रुपए प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं, और उसमें सौभाग्य 2,15,00,000 महिला किसान 6,000 रुपया किसान के खाते में आता है।
18.5 लाख ऊपर किसानों को झारखण्ड में पैसा आ रहा है। किसान आगे बढ़े, हमेशा यही मोदी जी का संकल्प है।
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को घेरते हुए कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने लोकभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज मुलाकात कर एसीबी को 750 करोड़ रुपए से अधिक कथित शराब घोटाला मामले में तुरंत चार्जशीट दाखिल करने के लिए निर्देश देने का आग्रह किया। साथ ही एसीबी की कथित संदेहास्पद भूमिका और संपूर्ण प्रकरण की सीबीआई से जांच कराने की मांग की।
इस मामले की सीबीआई से जांच होगी तो यह पता चल जाएगा। जिस दिन प्रिया दुबे को पूछेगा सीबीआई कि आपने चार्जशीट क्यों नहीं सबमिट किया 90 दिन में, जिस दिन अनुराग गुप्ता को पूछेगा कि आपने चार्जशीट क्यों नहीं सबमिट किया 90 दिन में, तो सारे बातें खुल जाएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरे मामले को हेमंत सोरेन अगर निष्पक्ष है तो आप सीबीआई को सौंप दीजिए केस को, जांच होने दीजिए, जांच होगी तो पता चल जाएगा।
कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा है कि पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर संवेदनशील है। श्री राजू ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पेशा कानून के बेहतर क्रियान्वयन और ग्राम सभा को सशक्त बनाने के प्रयास हो रहे हैं।
झारखंड आके ट्रेडिशनल ग्राम सभा हमारा एंगल में यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एक्टिविटी है। कांग्रेस पार्टी हर एक ग्राम सभा को पीसा में जो ताकत उनका हाथ में दिया वो ताकत लेके हम कांग्रेस पार्टी काम करेंगे।
झारखंड समेत देश भर में प्राकृतिक गैस पीएनजी के विस्तार में तेजी बनाए रखने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय पीएनजी अभियान के दूसरे चरण को इस वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि 1 मार्च से औसतन प्रतिदिन 5 लाख से अधिक घरेलू एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए हैं। सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और पीएनजी का पर्याप्त भंडार है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सीसीएल के बनियाडीह इकाई के महाप्रबंधक गिरीश चंद्र राठौर ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 6 लाख टन कोयला उत्पादन किया गया है। श्री राठौर ने आज पत्रकारों से बातचीत में बताया कि अगले वर्ष कोयला का उत्पादन 13 लाख टन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कई लंबित विकास कार्यों को जल्द पूरा किया जाएगा ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके।
गिरिडीह क्षेत्र की कबरीबाग माइंस को 6 लाख के उत्पादन लक्ष्य को छूना था, जो हमने उसे कर लिया है। दोनों माइंस से हम उम्मीद करते हैं कि 13 लाख लोगों को उत्पादन करना चाहिए, इसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। हम लोग चाहते हैं कि आप सबके सहयोग से रोजगार के नए अवसर को आप लोग बताएं, ताकि हम लोग उन सबको रोजगार के दूसरे माध्यम से जोड़ पाए।
रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने आज पत्रकारों से बातचीत में बताया कि छापेमारी के दौरान 2 लाख रुपए से अधिक की नकदी, एक चारपहिया वाहन, करीब 5 क्विंटल 67 किलोग्राम डोडा और अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है।
ये एक पूरा संगठित गिरोह चल रहा था, जिसमें 5 से ज्यादा लोग हैं और अभी उनकी छापेमारी की जा रही है। और स्थानीय लोगों से ये लोग डोडा अफीम खरीदते थे और फिर उसको अन्य जिलों में बेचते थे। गिरोह का सरगना पकड़ा गया है और अन्य लोगों पे भी छापेमारी की जा रही है।
पलामू पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 35 लाख रुपए मूल्य का डोडा समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जिले की पुलिस अधीक्षक रिस्मा रमेशन ने आज पत्रकारों से बातचीत में बताया कि 2 क्विंटल 16 किलोग्राम डोडा एक चारपहिया वाहन में लादकर उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था।
चेकिंग के दौरान गाड़ी को रोका, उसमें 25 बोरा में लगभग 216 किलोग्राम डोडा लोडेड था और साथ में 2 अभियुक्त भी उसमें जो ट्रैवल कर रहे थे। इन दोनों का जो है गिरफ्तारी करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।
महावीर जयंती को लेकर राज्य भर में जैन धर्मावलंबियों द्वारा आज शोभा यात्रा निकाली गई। रांची में भी महावीर जयंती का आयोजन धूमधाम से हुआ। इस अवसर पर डोरंडा में भगवान महावीर जन्म कल्याण महोत्सव में मेयर रोशनी खलखो भी शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने भगवान महावीर के आदर्शों और उपदेशों को आत्मसात करने की अपील की। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में 6 अप्रैल तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। देवघर, दुमका और गिरिडीह समेत कुछ अन्य जिलों में आज ओलावृष्टि की आशंका है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। राज्य के अन्य हिस्सों में आज और कल आंधी तथा वज्रपात की संभावना है। इससे अगले 24 घंटे के दौरान तापमान में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। रांची में कल से महिला हॉकी का रोमांच देखने को मिलेगा। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप की कल से रांची में शुरुआत हो रही है। इस दौरान विभिन्न टीमों के बीच श्रेष्ठता की जंग देखने को मिलेगी, जबकि फाइनल मुकाबला 12 अप्रैल को खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड समेत देश भर में कल से शुरू होगा जनगणना का पहला चरण। डिजिटल माध्यमों से घरों की सूची, निर्माण सामग्री, स्वामित्व और बुनियादी सुविधाओं के जुटाए जाएंगे डाटा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल से की मुलाकात। कथित शराब घोटाला मामले में चार्जशीट दाखिल करने और सीबीआई से जांच कराने का आग्रह। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू ने पेशा कानून के बेहतर क्रियान्वयन और ग्राम सभा को सशक्त बनाने पर दिया जोर। राज्य के कई हिस्सों में 6 अप्रैल तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान। आज और कल आंधी और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी। और रांची में कल से दिखेगा महिला हॉकी का रोमांच। सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में टीमों के बीच होगी श्रेष्ठता की जंग। 12 अप्रैल को खिताबी मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।